रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य, अर्जुन का प्रार्थनाएं। अर्जुन ये प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अपनी महानता बताना चाहते हैं। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान को और प्रेरणा कहना तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान की प्रेरणा कह रहे, मतलब भगवान को उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये भी अगर ऐसा शब्द यूज किया जाए कि वो और बताएं उसके बारे में। मान लीजिए कोई वक्ता है, उसको आप बोले आपने बहुत अच्छा क्लास दिया, तो उसका भी लगेगा मन हम और बोले कुछ, इनका उत्साह है। तो अर्जुन अपना उत्साह प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक में भगवान के बारे में सुन करके। आप देख सकते हैं कि हमने चर्चा किया था, जब कोई व्यक्ति समझता है कि भगवान सभी चीज के स्रोत हैं, तो बड़े उत्साह से कृष्ण की शरण लेता है। तो आज ही अर्जुन इन 12-13 श्लोकों में बताएंगे। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षीर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। एक बात तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अर्जुन का ज्ञान महान व्यक्तियों से सुनने के ऊपर आधारित था। एक व्यक्ति कह रहे थे हमसे मिले कि हमारे पिताजी, मतलब उनके पिताजी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, लेकिन लोग उनको बहुत शुद्ध मन का मानते थे। तो मैंने कहा, और उनके पिताजी कहीं कुछ पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे या बायोलॉजी के। तो हमने कहा, जो व्यक्ति बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके बारे में कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत बायोलॉजी जानता हो, तो लोग क्या बोलेंगे, वाह भाई साहब आप तो बहुत जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो लोगों के मंतव्य को नहीं स्वीकार करना होता है अगर किसी महान व्यक्ति के बारे में आपको जानना है। भगवान के संबंध में बहुत सारे लोग किसको भगवान मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो तत्वदर्शी हैं, जैसे भगवान ने चौथे अध्याय में बताया था, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः तत्वदर्शिनः, फोर्थ चैप्टर में बताते हैं। तो जो तत्वदर्शी हैं, जो भगवान का साक्षात्कार किए हैं, उनके वचनों पर हमें विश्वास करना है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कौन कौन से ऋषि हैं, असित ऋषि, नारद, देवल और व्यासदेव। और फिर कह रहे हैं कि भगवान आप स्वयं बता रहे हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि अर्जुन मस्का लगा रहे हैं भगवान को, क्योंकि वो उनके मित्र हैं, इसलिए बोलेंगे कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं। लेकिन अर्जुन सत्यापित कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं कि केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं ही स्वीकार नहीं कर रहा हूं, महान महान ऋषिगण भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो भगवान को जानने का तरीका क्या है? महान व्यक्तियों से, महान आचार्यों से, शास्त्रों से सुन करके स्वीकार करना चाहिए। बात बहुत सिंपल है, लेकिन इट्स वेरी एम्फेटिक पॉइंट। तात्पर्य को देखिएगा। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। कैसे स्पष्ट है? शब्द है भवान, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हैं और मैं भी हूं। आपने ध्यान दिया इस बात पे? अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हैं और मैं भी परम पवित्र हूं, मैं भी परम ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं है। महाराज जी इस बारे में बोल रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि आजकल किसी के आगे कुछ भी टाइटल लगा देते हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता है, और कुत्ते के गले में आप पट्टी डाल दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री, तो वो तो कुत्ते की तरह कार्य करेगा। उसको टाइटल दे देने से उसके अंदर वो योग्यता नहीं आ जाती है। ऐसे ही आजकल लोग किसी सामान्य व्यक्ति को परात्पर ब्रह्म कहते हैं, साक्षात परम पुरुष कहते हैं, लेकिन उसके कहने से वो व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता है। इसीलिए प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं, यहां पे आप देखिए स्पष्ट है, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। तो भगवान शब्द करते आप पर ब्रह्म है, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं अर्जुन, अपने आप को नहीं जोड़ रहे। इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म है, आप, यू, नॉट मी, ठीक है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं वे। एक बात इंपॉर्टेंट है कि लोग कह सकते हैं भक्त लोग तो जानते नहीं हैं, भक्त लोग तो मानते हैं, हम लोग जानते तो नहीं कि भगवान कौन है, हम तो मान रहे हैं भगवद गीता की बात, लेकिन यही चेतना के विकास का लक्षण है। मेरे आप लोग समझ गए बात। कोई व्यक्ति की सहज श्रद्धा है भगवद गीता पे, भागवतम पे, तो ये उसकी भक्ति का लक्षण है, ये उसकी सुकृति का लक्षण है, और अन्यथा व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती है। और आपसे आप सब लोग जानते हो इस बात को कि जैसे पिता को आप केवल माता के द्वारा जान सकते हैं, उसी तरह से केवल परम पिता को जानने का एकमात्र तरीका एटलीस्ट बद्ध आत्मा के लिए यही है कि वो शास्त्र को सुने। तो अगर शास्त्र सुनकर के स्वीकार कर लेता है तो वो सारे ज्ञान योगी, हट योगी, सबको बाईपास करके जान लेता है कि भगवान कौन है। आप लोगों को ये सब बात बहुत आसान लगती होगी, जैसे आप लोगों को अपने पिता का नाम जानना बड़ा आसान लगता है। कोई डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी नहीं है, होती अगर माता ने नहीं बताया होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो जितने ज्ञान योगी हट योगी हैं, लगे पड़े हैं, वो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवद गीता का आश्रय नहीं लेते। तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, करने के द्वारा भक्त बहुत आगे निकल जाता। श्रद्धा से स्वीकार कर ले कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करने लग जाए, प्रणाम करने लग जाए, तो बाकी सारी चीजों को बाईपास कर देता है। मेक सेंस टू यू? ओके। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है, वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब भक्त के हृदय से अज्ञान नष्ट हो जाता है तो उसके पास जीवन में हर क्षण कृष्ण को प्रणाम करने के लिए अलावा और कोई औचित्य बोलेंगे विकल्प नहीं रहता। विकल्प भी नहीं कहना चाहिए, मतलब ही पेज ऑब्सेंसेस टू कृष्ण एट एवरी मोमेंट। किस प्रकार से कृष्ण हम पर, हमारी, हम कृष्ण पर आश्रित हैं और कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। जब भक्त को वाकई अनुभव होने लगता है तो हर क्षण कृष्ण को प्रणाम ही करता रहता है और कृष्ण के उपकार को महसूस कर पाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। थोड़ा इस संबंध में बताना चाहता हूं, सत्य का अर्थ होता है जो तीनों कालों में निर्विकार रहे, कोई विकार नहीं आना चाहिए, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो रहना चाहिए। तो आत्मा सत्य है या नहीं है? आत्मा सत्य है। शरीर सत्य है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि शरीर परिवर्तित होता रहता है। अब ऐसे करते चले जाएं तो जितने भी सत्य हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? प्रिंस प्रभु, भगवान कृष्ण का। यहां तक कि भगवान विष्णु की भगवत्ता भी भगवान कृष्ण से ही आती है। तो इसीलिए परम सत्य भगवान कृष्ण है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। एक चीज आपने ध्यान दी कि अर्जुन का संबंध भगवान से फुल फ्लेज्ड है, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हैं या नहीं है। अर्जुन को कृष्ण प्रेम प्राप्त है या नहीं है? है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के बारे में शास्त्रों से नहीं सुने, खूब सुन रहे हैं ना, नारद जी से सुने हैं, देवल से सुन रहे हैं, व्यासदेव से सुन रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कथाओं को सुनते थे। आप देखते ही हो कि युधिष्ठिर महाराज तो जब जंगल में गए थे तो कहते हैं हम तो बड़े खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि ऋषि मुनि के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा हमें खूब पुराणों की कथा सुनने को मिल रहा है। यहां तक कि भगवान श्री राम जब विश्वामित्र के संग जाते हैं, विश्वामित्र ऋषि के साथ, तो वहां भी उनसे कथा सुनते रहते हैं, पूरी पूरी रात सुनते रहते हैं, कथा पूछते रहते हैं, यहाँ क्या हुआ था, इसकी कथा क्या है, उसी कथा क्या है, ऐसे करके सुनते रहते। तो ये पुराणों की कथा सुनना, ये राजर्षियों का एक स्वभाव हुआ करता था, और ये तो भक्त है भगवान के। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। अगर आप एक चीज पर विचार करें, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, जैसे भगवान ने बोला था पिछले श्लोकों में, नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान स्वयं ही उसके हृदय के ज्ञान को नष्ट करते हैं। अन्य योगी लोग अपने प्रयासों पर निर्भर करते हैं, लेकिन भक्ति योग में, भक्ति में व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और भगवान स्वयं अज्ञान को नष्ट करते हैं, उस अज्ञान को भी जो आप नहीं देख पाते। भगवान सारे अज्ञान को देख रहे हैं, तो जड़ मूल बात यह है कि हमारा अज्ञान भगवान की शक्ति से प्रकट हुआ है माया के द्वारा, तो उसको हटाने का काम और हटाने का युक्ति भी भगवान ही जानते हैं। तो अगर भगवान को प्रसन्न किया तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके। केना उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक ये बार बार प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि धाम का मतलब वो जहां जिस पे आश्रय लिया जाए, जहां पे सब कुछ निवास करता है वो आश्रय कहलाता है, धाम कहलाता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद इस तरह से। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रह रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की नव विधियों में से है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। इट्स वेरी क्लियर। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो परम पवित्र है। भगवान के स्वरूप को देखने से, ध्यान करने से व्यक्ति का जो अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश हो जाता है। उससे अधिक नाश किसी वस्तु से नहीं होता। तो आप नाम ले लीजिए, रूप ले लीजिए, गुण ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप भगवान के संबंध में कुछ भी लेंगे, उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। ये भगवान की परम पवित्रता है। ठीक है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती है। एक प्रश्न मैं उठाता हूं, उसका उत्तर आप बताइए। पाप कर्मों से शुद्धि होकर शुद्ध होने की क्या जरूरत है भक्ति में? ओके, माइक लीजिए। यस यस, घबराइए मत, माइक ले लीजिए। यस,
श्लोक थोड़ा भूल रहा, मगर जो जिनका पाप कर्म खत्म हो जाता है वही दृढ़ पूर्वक भक्ति कर सकते
हैं। हाँ, जिन लोगों का पाप कर्म खत्म होता है वही दृढ़ता से भक्ति करते हैं। भक्ति में दृढ़ता को हटाने वाली क्या चीजें हैं?
डाउट्स, मतलब
डाउट्स आते हैं, डुअलिटीज आती है, राग द्वेष, आज अच्छा लग रहा है, आज नहीं लग रहा है, ऐसे करके। तो जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति इन चीजों पर विचार करना छोड़ देता है। अपितु भगवान इस बात को बोलते हैं, सिद्ध सिद्ध हो निर्विकार समत्वम योगम उच्चते। योग है क्या? किसी भी योग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सिद्धि मिली या नहीं मिली, इस पे विचार ना करके निर्विकार, मतलब बिना परेशान हुए योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। समत्वता, समता होना बहुत जरूरी। नहीं तो इस जगत पे जब हमें कुछ सिद्धि मिलती तो हम करते हैं, सिद्धि नहीं मिलती तो नहीं करते। तो ये नहीं होना चाहिए। और इस चीज को भगवान छठे अध्याय में बोलते हैं, योगो निर्विण्ण चेतस। निर्विण्ण मतलब हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं करना, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। जब तक व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त ना हो जाए, तब तक करता रहे, उसके बाद भक्ति को बंद कर सकता है ना। नहीं, प्रेमा भक्ति की बात तो आप बंद कर ही नहीं सकते। तो जब तक प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है, व्यक्ति को कमर कस के भक्ति करते रहना चाहिए। समझते हैं इसका मतलब? तो यहां इंपॉर्टेंट है कि जब पाप नष्ट होते हैं तो भगवान की भक्ति में अभिनिवेश होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रत। तो बार बार अगर आप देखेंगे तो श्लोक से क्या ध्वनित होता है, उस भक्त की भगवान की भक्ति पे बहुत अटूट श्रद्धा है, तो चाहे कितने भी बाधाएं आए वो छोड़ता नहीं। इसीलिए चार नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारी भक्ति की श्रद्धा विश्वास दृढ़ता से बना रहे। ओके। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, ये तो आप समझ गए हैं कि अपने इमोशंस के द्वारा नहीं कह रहे हैं। महाराज जी एक जोक मारते हैं, कहते हैं कि एक बार एक गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या भगवान है? तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा क्या साक्षात्कार है? तो शिष्य कहते हैं, मैं तो आपको साक्षात परब्रह्म के रूप में देख रहा हूं। तो शिष्य गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा साक्षात्कार गलत हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी को शिक्षा कौन दे रहा है? शिष्य दे रहा है। ऐसे गुरुजी बहुत घूमते हैं। ये गुरु का एक बहुत बड़ा धोखा है अपने शिष्य के प्रति, अगर वो अपने आप को भगवान कह दे। आज मैं डेंटिस्ट के पास गया था थोड़ा सा कार्य के लिए, तो मुझे हंसी आ रही थी तो महाराज की बात याद करके कि कुछ कोई व्यक्ति था जो अपने आप को भगवान कहता था, और पता लगा भगवान जो है दांत ठीक कराने के लिए डेंटिस्ट के पास गए। तो ऐसे भगवान गली गली में घूमते रहते। भगवान को इस प्रकार से किसी की आवश्यकता नहीं है बीमारी के इलाज करने के लिए। तो वेद के द्वारा जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि बहुत बार लोग बोलते हैं, लिखा तो है, कोई देखा भी है, लिखा तो है, कोई देखा भी है, ऐसे करके। तो हाँ, लिखा भी है और देखा भी है, मतलब नारद मुनि ऋषि जितने भी हैं उन्होंने भी साक्षात्कार किया है। कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। परम अस्तित्व है मतलब अगेन उनके अस्तित्व पे सभी का अस्तित्व निर्भर करता है, और भगवान का अस्तित्व किसी के अस्तित्व पे निर्भर नहीं करता है। इस चीज को आप कल्पना कर पा रहे हैं? भगवान की अपनी अलग सत्ता है। भगवान जैसे आप देखिए कि पृथ्वी सूर्य के ऊपर आश्रित है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है, जो जितने ग्रह मंडल हैं वो सब कमल की नाल के अंदर हैं, फिर वो गर्भोदकशाय विष्णु पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गर्भोदकशाय विष्णु को किसी की आवश्यकता नहीं, कारणोदकशाय विष्णु को किसी की आवश्यकता नहीं, अपने आप इंडिपेंडेंट है, किसी की आवश्यकता नहीं, ना भौतिक तत्वों की, ना कुछ, किसी भी तरह से हर तरह से वो सराट है। तो भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, भगवान के अलावा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। एक बार किसी ने प्रश्न किया था एक प्रवचन में कि भगवान कौन है, तो बहुत सारे उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन एक भक्त ने बड़ा अच्छा बोला, जो व्यक्ति पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो वो भगवान है। सही डेफिनेशन है भागवतम के प्रथम श्लोक के अनुसार स्वराट। और ये विचारणीय बात है कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं, हर व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी चीज के लिए कभी ना कभी दूसरे से सहायता लेता ही है। थोड़ा सा इस चीज को छोड़ ना दिया जाए, पर विचार किया जाए, भाई जगत में इंडिपेंडेंट कौन है? कोई भी नहीं है भगवान को छोड़ करके। और आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब वो जन्म हुआ तो उनको पता ही नहीं था कि कौन है और कैसे सृष्टि करें, कुछ नहीं पता था। हमने पढ़ा था ना, कल परसों पढ़ा था। तो इंडिपेंडेंट केवल कृष्ण है, इसी कारण से वो इंडिपेंडेंटली भी कृपा दे सकते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कालिया को कृपा कैसे मिल गई, तो ये हमेशा प्रश्न बना ही रहेगा। उत्तर सिंपल है, भगवान इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है कि वो सुहृद भी हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गलत कभी कुछ नहीं करते। ये बात समझ में आ रही है? कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं लेकिन गलत कभी कुछ नहीं करते, भले हमको लगे कि गलत हो रहा है लेकिन गलत कभी करते नहीं भगवान। ठीक, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, ये आप लोग समझ गए लाइन, भगवान को मरना नहीं पड़ता कभी। और अगर कभी लगे कि भगवान शरीर छोड़ रहे हैं, जैसा कि भगवान 11वें स्कंद में हमको मालूम चलता है यदुकुल का विनाश, तो एक भगवान की ये इल्यूजरी लीला है। और जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते हैं, उन लोगों के हृदय में इस विश्वास को स्थापित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, यार देखो यदुकुल का विनाश हो गया, कैसे भगवान है, अपने ही कुल को बचा नहीं सके, अपनी ही रानियों को बचा नहीं सके। तो आचार्य लोग समझाते हैं कि ये भगवान की शाश्वत लीला नहीं है, इसको ये इल्यूजरी है, जैसे कि जादूगर जादू दिखाता है। तब देखिए भक्त इसमें रिसर्च नहीं करता है, उसको विश्वास है कि आचार्य लोग समझते हैं साक्षात्कार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और उसको रिवील कर रहे हैं, तो हम उसको वैसे स्वीकार कर लेते। ये चीज है आगे भी। ओके, इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो अभी देख लीजिए, पूर्ण ज्ञान भगवत कृपा से प्राप्त होने का अर्थ है कि कृपा के कारण व्यक्ति की श्रद्धा होती है शास्त्रों में, और बड़े भाग्य से उसको ऐसा कोई प्रमाणिक व्यक्ति मिलता है जो ये बता सके कि ऐसा कुछ है सब कुछ। मैं इसे रिपीट करूं, बहुत भाग्य से किसी व्यक्ति को प्रमाणिक व्यक्ति मिलता है और उसकी ऐसी श्रद्धा होती है कि ये सही बोल रहे हैं, ज्ञान तो सही है लेकिन आपको सही लग रहा है क्या? जब सही लगेगा तो विश्वास करके कृष्ण का भजन करेंगे। मेक सेंस? ये बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है तो उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। यहां पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवद गीता को समझा नहीं जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। आपने अभी मेरी बात, जो मैंने छोटा सा एक फुटनोट दिया था, क्या आप उस पर विचार कर रहे हैं? एक सो कॉल्ड संस्कृत का प्रकांड व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, वो सारे शास्त्रों को पढ़ के क्या बोलता है? कृष्ण तो भगवान नहीं है, कोई और है, परात्पर और कुछ है। और जो साधारण सा व्यक्ति है वो भगवान की बात को गुरु के मुख से सुन करके, शास्त्र से सुन करके स्वीकार करता है, भगवान का भजन करता है और भगवान के धाम को जाने के योग्य बन जाता है। तो भगवत कृपा किसको मिलती है? कृपा कहाँ छुपी है? श्रद्धा में, उस सुकृति, कुछ सेवा करता है, तो फिर उसको ये सी मति होती है कि ये सारे ठीक है। और आप भी देखिए कि जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, सहज रूप से आप लोग स्वीकार कर लेते हो कि भगवद गीता सही है। तो इसको स्वीकार करने की मति आने का अर्थ है कि बहुत भक्ति, बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो चुके हैं, तब इस प्रकार की श्रद्धा फलीभूत होती है। इट्स ए मैच्योरिटी ऑफ ऑल द पायस एक्टिविटीज, जो पुण्य व्यक्ति पहले किया रहता है उसकी वजह से श्रद्धा उत्पन्न होती है इस प्रकार की। क्वेश्चंस? अब हम लोग स्टॉप।